नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने। हरे कृष्णा। एकत्रित समस्त हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। पुरुषोत्तम मास के पवित्र महीने में और आज वैसे भी बड़ा विशेष दिवस है एकादशी का, तो पवित्र मास में एकादशी का जो शुभ दिन है। एकादशी का दिन वैसे भी भगवत स्मरण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कथा सुनने के लिए होता है, इसलिए इस दिन विषय कार्यों को व्यक्ति ने नहिवत रूप में करना चाहिए। सांसारिक प्रकृति के अधिक से अधिक हरि भजन करने में समय लगाना चाहिए। तो आज हम भगवान के महान भक्त, जो चतुर संप्रदाय के अंतर्गत जो पुष्टि मार्ग है, रुद्र संप्रदाय, उनमें एक वैष्णव हुए थे सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज जी के जीवन के विषय में आज हम सुनेंगे। सूरदास जी श्री उद्धव जी के अवतार थे। कृष्ण लीला में मथुरा में भगवान कृष्ण के जो भाई भी थे और मित्र समान भी थे उद्धव जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से वृंदावन में गोपियों का संग प्राप्त किया था, और उनका संग प्राप्त करने के बाद उनको महसूस भी हुआ था कि गोपियों के समान श्रेष्ठ भक्त कोई नहीं है। तो गोलोक वृंदावन धाम की कथा है, जिसमें एक दिन उद्धव जी भगवान कृष्ण को मिलने के लिए निकुंज में जाते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी लीला कर रहे हैं। और निकुंज के पहरे में ललिता जी खड़ी है, क्योंकि ये माधुरी रस उपासना है, तो उसमें जो गोपियां हैं उनकी अनुमति के बगैर वहां व्यक्ति का कोई प्रवेश नहीं होता। तो ललिता जी खड़ी है और उद्धव जी आ गए। उद्धव जी जाना चाहते हैं अभी अंदर, तो ललिता जी उनको रोक रही है, कहते राधा रानी और कृष्ण अभी अपने लीला में व्यस्त है। तो उद्धव जी थोड़ा अनसुना करके प्रवेश कर देते हैं, तो ललिता जी उनको फटकार लगाती है और श्राप देती है कि तुमने ये जो अपराध किया ना, उसके कारण तुमको मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा, और तुम्हारी विवेक की आंखें नहीं है इसलिए तुम अंधा होगा। उन्होंने कहा, मैं किसी विशेष कार्य के लिए कृष्ण से मिलने जा रहा था, तो वहां तुमने मुझे रोक दिया, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमको यवन घर में जन्म लेना पड़ेगा, यवन घर में तुम्हारा पालन पोषण होगा। एक प्रसंग में इस प्रकार वर्णन किया है हमारे वैष्णवों ने, एक प्रसंग में और भी वर्णन किया है कि उद्धव जी इस प्रकार जब निकुंज में प्रवेश कर गए थे ना, तो उनको बड़ी प्यास लगी, तो पानी पीने जा रहे, तो वहां पर एक पात्र रखा हुआ है जल पात्र, उसमें से पानी पीने जा रहे, तो ललिता जी रोकती है, ये पात्र झूठा है, इसमें से पानी मत पियो। तो उद्धव जी कहते तुम अपने सेवा कार्य को ढंग से नहीं करते, झूठा पात्र यहाँ रखा हुआ है, ऐसा झूठा पात्र और झूठ मूठ का खाना पीना या आचार व्यवहार अच्छा है, ये तो अंत्यज लोगों का है, तुम अपनी सेवा ठीक से नहीं करते इसलिए अंत्यज के वहां चली जाओ। अंत्यज मतलब यवन प्रकृति के लोग। तो ललिता जी कहते मैं किसी विशेष कार्य के लिए पास में गई थी, मैंने आके कार्य पूर्ण करना ही था, लेकिन तुमको तो झूठा दिखाई दे रहा था, तुम्हारी आंखें नहीं थी तो तुम क्यों उसको ग्रहण करने लगे, आंखें होने के बावजूद भी तुमको तो नहीं समझा, इससे अच्छा तो आंखें ना हो ना बढ़िया है, तो तुम अंधे ही पैदा हो जाओ। तो ऐसी लीलाओं के कारण भगवान की इच्छा से समझिए सूरदास जी का इस मृत्यु लोक के में जन्म होता है, क्योंकि समय समय पर भगवान संसार में अपने भक्तों को भेजते हैं और जिनके माध्यम से वो लोग भगवान की महिमा का गान करते हैं। और वैसे भी उद्धव जी के हृदय में भगवान की महिमा गान करने की खूब अभिलाषा थी, जब वो गोपियों को मिले थे ना तब वो उनके मन के मन में रह गई थी। तो उद्धव जी सोच रहे थे एक जन्म ऐसा ले जिस जन्म में बस कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ भगवान की महिमा गाता रहूंगा, जैसे कभी कभी भक्त लोग भाव में कहते ना जी भर के भजन करना है, पेट भर के भजन करना है, मतलब दूसरा कोई कार्य नहीं करना, बस सिर्फ हरि भजन में ही लगे रहना है, तो अंतरात्मा को बड़ा संतोष मिलता है उस दिन, अच्छा अनुभव भी महसूस होता है। तो भगवान समय समय पे भक्तों को इस प्रकार से यहां पर भेजते हैं कि ताकि भक्त लोग भगवान के महिमा का गान करें और हम सब लोगों को भी शिक्षा मिले। तो सूरदास जी का प्राकट्य 1535 विक्रम संवत को वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था, मंगलवार को, और उनका गांव दिल्ली के नजदीकी सिही नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। और जैसे पूर्व वर्णन आया उसी के अनुरूप सूरदास जी जन्म से अंधे ही प्रकट हुए थे। माता पिता को पहले तो आनंद आया कि एक पुत्र प्राप्ति हुई है, लेकिन यह सोच के भयंकर दुख भी लगा कि पुत्र तो अंधा है, अब अंधा व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में माता पिता दुखी भी हो गए कि ये अभी अपने जीवन में आगे क्या करेगा। तो माता पिता की इच्छा कुछ और थी और बालक का जन्म अंधे स्वरूप में हुआ, तो उनकी जो बच्चे के प्रति जो रुचि थी, जो एक वात्सल्य भाव था ना, वो थोड़ा 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 कम होने लग गया। भगवान भी दिखाना चाहते हैं कि संसार के संबंध कितने स्वार्थ के कगार पर टिके होते हैं, तो उनका भाव थोड़ा कम होने लगा। कई बार लोग कहते माता पिता का भाव संतानों के प्रति कम कैसे हो सकता है, ये भौतिक जगत उसमें भी कलयुग है, विषय हो सकता है, निश्चित हो सकता है, भाव कम क्या हो सकता है, वो तो उनका वध तक कर सकते हैं, अगर आवश्यकता नहीं है तो भ्रूण हत्या भी कर सकते हैं, भाव कम होने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति स्वार्थ के कगार पर विशेष जीवन जीता है। और सूरदास जी के लिए भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ कि धीरे धीरे माता पिता उनको कम पसंद कर रहे, और वैसे वैसे सूरदास जी इस संसार की माया से अलग होते जा रहे। 6 वर्ष के जब थे तब उनके पिताजी को किसी यजमान ने 2 सोने के सिक्के दिए होंगे किसी ब्राह्मण के कार्य में, क्योंकि ब्राह्मणों का स्वभाव होता है कि ऐसे पूजा पाठ करवाना, तो किसी यजमान ने खुश होकर दो सिक्के दिए होंगे सोने के। उस दिन ही बड़े प्रसन्न हो गए उनके पिताजी, दो सिक्के मिले, 6 महीने तो आराम से खाना पीना निकल जाएगा। और बड़े चाव से सिक्के संभाल के रात्रि को रख लिए। दूसरे दिन सवेरे जहां सिक्के रखे वहां लेने गए तो सिक्के मिल नहीं रहे। अब बड़ा परेशान, रात्रि को यहीं रखे थे, कहां चले गए? अब धन के अभाव के कारण क्लेश पड़ गया, सबसे घर में पूछ रहे सिक्के कहां गए, अब किसी को कुछ पता नहीं है। एक तो दुख हो ही रहा था सिक्के गुम हो जाने का, उतने में 6 साल के सूरदास जी ने क्या कहा कि ब्राह्मण को धन के पीछे इतना लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं मिले तो ठीक है, हमारा जीवन तो ऐसे भी जा ही रहा था, सिक्के आए और सिक्के गए, जगत का सिद्धांत है, इसे ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो एक तो उनके पिताजी दुखी थे और इन्होंने जले पे नमक छिड़क दिया। अब उसके कारण क्या हुआ, उनके पिताजी बड़ा गुस्सा कर गए उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहे तो मैं वो सिक्के आपको वापस दिला सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैं सिक्के आपको वापस दिलाऊंगा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, आपको मंजूर है? बताओ। उन्होंने कहा सिक्के दिलाओ। सूरदास जी ने भगवत कृपा से सिक्के वापस करवा दिए, भगवान से प्रार्थना की, सिक्के मिल गए। अब नियम के अनुसार सूरदास जी कहते अभी मैं घर का त्याग करके जा रहा हूं। तो थोड़ा माता पिता चिंतित हो गए, कह रहे ये तो बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण बालक है, ये तो भले अंधा है लेकिन शक्ति है इसमें बड़ी, देखो घूमे हुए सिक्के इसने वापस करा दिए, ये घर छोड़ के जाएगा तो अच्छी बात नहीं, आ गया वापस स्वार्थ। पहले बच्चे में कोई लाभ नहीं दिख रहा था, अभी कोई लाभ दिख रहा है तो अभी जा रहे हैं तो दुख लग रहा है। तो वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे, तो उतने में सूरदास जी क्या कहते, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो ये सिक्के वापिस चले जाएंगे, आप निर्णय करो कि मुझे रोकना है कि नहीं। घर में से एक भी व्यक्ति कुछ बोला ही नहीं, उनको समझ में आ गया, वो वहां से चल पड़े। ये सब भगवान की कृपा होती है कि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि भक्तों का भव बंधन अपने आप निकल जाए। देखो अनेक अनेक भक्तों को बचपन में कितने कष्ट आए हैं, जिनको हम संसार में सुख मानते हैं ना कि सबके साथ रहना, बढ़िया खाना पीना, आनंद से जीवन जीना, संतों के जीवन चरित्र में ऐसा सुख मिले ही नहीं उनको, उनको कष्ट ही कष्ट झेलने पड़े। तुलसीदास जी को भी ऐसे कष्ट मिले, सूरदास जी को भी कष्ट मिल रहे, नरसिंह जी भी जन्म से गूंगे थे, जन्म से माता पिता उनके भी चले गए, दादी ने उनका पालन पोषण किया, अनेक कष्ट है भक्तों को। लेकिन भक्त कहते ये तो अनेक सुविधाएं है भक्ति करने की, इसी के कारण तो कहते संसार में से मन हट जाता है अपने आप और प्रभु भजन करने का मौका लगता है, तो कहते इसको हम कष्ट मानते ही नहीं, ये तो सुविधाएं है, कष्ट है ही नहीं। हमारी समझ और भक्तों की समझ में बहुत अंतर है। सूरदास जी वहां से 4 कोस दूर कहीं चले थे, अब थोड़ी देर थके वहां बैठ गए, उतने में एक व्यक्ति आया उनके पास जिसकी 10 गाय गुम हो गई थी। वो पूछ रहा था सबसे इधर उधर, हमारी गाय देखी है क्या? सूरदास जी के पास भी आए, वो बैठे थे वहां पर, कहते अगर मेरी गाय कोई बता देगा तो मैं 2 गाय उसमें से उसको दे दूंगा। सूरदास जी कहते हमको आपकी गाय नहीं चाहिए, लेकिन आपको बता सकते हैं कि आपकी गाय कहाँ है। उन्होंने वहां बैठे बैठे, दिखता तो था नहीं, भगवत इच्छा से वहां बैठे बैठे बोल दिया, यहां से दूर एक जमींदार है, उसके मकान के पीछे उसकी घुड़शाला है ना, उसमें तुम्हारे 10 की 10 गाय बंधी हुई है, उधर जाके ले आओ। वो गया गाय लेके आया, अब ये इनके पीछे लग गए, आपकी मैं क्या सेवा करूं बताओ, क्योंकि गाय लेके आया ना। अब सूरदास जी ने तो बड़ा हाथ जोड़ के विनती की, भाई हम हमारा ही नहीं कर पाते, दो गाय लेके हम क्या करेंगे, इसलिए हमको गाय नहीं चाहिए, आप अपना आराम से जियो। अब उसने क्या किया, अनेक लोगों को कहा तो उतने एरिया में ख्याति फैल गई सूरदास जी की, लोग मिलने आने लगे। एक बाबा जी आए बड़े छोटे से, लेकिन दिखता नहीं है लेकिन अंतरात्मा से सब दिखता है। तो आजू बाजू के लोग आने लगे, ये बड़े परेशान हो गए। उतने में क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि भाई ये मान प्रतिष्ठा है ना, ये तो भक्ति मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करेगी, यहां से खिसक जाना ही अच्छा है, अच्छे संत तो ऐसे भागी जाते हैं, वो नहीं चाहते मान प्रतिष्ठा में पड़ना, वो तो चाहते जगत के लोग जितना कम पूछे उतना अच्छा है, तो उतनी बाधा कम रहेगी। तो वहां से वो भगवान की प्रेरणा से मथुरा की तरफ चले, विश्राम घाट पर रुके और वहां से आगे रुणकता गांव में गौ घाट था, वहां पर जाके बैठ गए, जगह अच्छी यहीं भजन करेंगे। क्योंकि वो क्या सोचते थे, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, और कपास को ऐसे 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूरा जिंदगी करते जाओ वो तो खत्म ही नहीं होगा, ओटते ही रहो उसको। हरि भजन करने आए थे, ये क्या ओटने लग गए हम यहां पर, जिसमें से कुछ निकलना तो है नहीं, जैसे पानी बिलो बिलो के आशा करके बैठे के कभी तो घी बाहर आएगा, लेकिन कितना ही बिलो लिया जाए घी तो आएगा नहीं। तो इसी प्रकार संत लोग समझते हैं संसार के जितने भी काम है जिसमें भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, वो सब काम ऐसे कपास ओटने के बराबर है या पानी को घोटने के बराबर है, आशा करते हुए कि घी निकलेगा, लेकिन निकलना कुछ नहीं इसमें से, ना हमारे पिताजी के पास निकला है, ना हमारे दादाजी के पास निकला है, ना हमारी पीढ़ी में किसी के पास निकला है, लेकिन व्यक्ति इतना पॉजिटिविटी में जीवन जीता है, इतना आशावादी है, शास्त्र में कहते हैं ना आशावादी होना चाहिए, इतना आशावादी है कि आगे वाले लोगों ने कोई गलती की होगी उनका नहीं निकला होगा, मेरे से जरूर निकल के रहेगा, इसलिए हम वो कार्य पूरी शिद्दत से करते हैं जो कार्य वो लोग कर करके थक गए थे, और उस कार्य को हम इतनी शिद्दत से करते हैं कि जैसे आज नहीं तो कल तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। इसी को दूसरी भाषा में कहते माया, जो है नहीं लेकिन फिर भी सबको अटका के रखती है, उसी को ही माया कहते हैं। कि व्यक्ति को लगता है कि अब पकड़ी, लेकिन हमेशा वो चार कदम दूर ही रहती है, जब है ही नहीं तो हाथ में क्या आएगा, और परछाई को पकड़ोगे कैसे, ये माया ऐसी लगा दी है कि कछुए के ऊपर बंदर बैठा है एक गाजर लटकाते हुए, क्योंकि बंदर थक गया है, गाजर लटका दिया उसने कछुए के आगे, कछुआ दो कदम चलता है गाजर खाने के लिए, तो साथ में गाजर भी दो कदम आगे चल जाता है, बस कछुआ गाजर खाने के लिए दो कदम चलता है और रास्ता नापता रहता है, गाजर हमेशा दो कदम आगे ही रहता है उससे, यही वास्तविकता है जीवन की, जो पल भर में संत लोग समझ जाते हैं और उनको तुरंत ज्ञान हो जाता है कि संसार किस प्रकार से नश्वर है, माया का बना हुआ है, सारा भ्रम ही भ्रम है, उनको मिनट नहीं लगती इस चीज को समझने में, जिसको समझने में विषय में पड़े व्यक्ति को जन्म जन्म लग जाते, फिर भी समझ में आता है, जरूरी नहीं है फिर भी समझ में नहीं आता। हल्की सी ख्याति क्या बड़ी के सूरदास जी तुरंत भांप गए, ये ठीक नहीं है, निकलो यहां से। गौ घाट पे वहां रहते थे, उतने में क्या हुआ, देव संयोग से दक्षिण भारत से यात्रा करते हुए और शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त किए हुए वल्लभाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ प्रयाग से भ्रमण करते करते मथुरा होकर उधर गौ घाट तक पहुंच गए, जहां पर सूरदास जी रुके हुए थे। सूरदास जी को वहां तो कोई विशेष जानता नहीं था, लेकिन वल्लभ आचार्य जी आए ना तो उनके साथ अनेक शिष्य थे और उनकी ख्याति बड़ी फैली हुई थी। वैष्णव लोग भ्रमण करते हैं ना तो ख्याति साथ चलती है उनकी, लेनी नहीं है उनको लेकिन फिर भी चलती है। वल्लभ आचार्य के अनेक शिष्य थे, नियमों से सारा अपना काम करते थे। सूरदास जी को पता चला कि यहाँ एक महान वैष्णव आए हैं दक्षिण भारत से। उन्होंने विनती की उनके शिष्य को कि मुझे आचार्य जी के दर्शन कराओगे क्या? उन्होंने कहा आचार्य जी अभी अपने भगवत सेवा में व्यस्त है, जब विश्राम मिलेगा तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। जब विश्राम प्राप्त हुआ तब सूरदास जी उनको मिलने के लिए आए। आचार्य जी को आके दंडवत प्रणाम किया। किसी ने उनके बारे में दो चार बातें कही कि स्वभाव से बड़े अच्छे हैं लेकिन जन्म से इस प्रकार से अंधे हैं, लेकिन भगवान को खूब गा गा के रिझाते हैं, खूब भजन गाते हैं भगवान के। तो आचार्य जी ने इच्छा व्यक्त की कि कुछ हमको भी गा के बताइए। आचार्य जी के कहने के ऊपर उन्होंने भजन गाना शुरू किया और इतना अच्छा भजन गाया तो आचार्य जी ने उनको कहा, अरे तुम तो वाकई में सुर हो। सुर मतलब जो गले से निकलने वाला सुर होता है ना, उसके तो तुम बादशाह हो, तुम तो वास्तव में सुर हो, बहुत बढ़िया गाते हो। ये जो गाते हो ये अभी भगवान के लिए गाया करो, भगवान के रूप के लिए गाया करो। कहते प्रभु मैंने तो कभी उनको देखा नहीं तो गाऊं कैसे, उनका वर्णन करूं कैसे मैं, क्योंकि जो जन्म से अंधा हो उसको तो जगत में को क्या कलर या क्या वस्तु किसी का क्या भेद समझ में आएगा। तो कहते गाऊं कैसे, तो वल्लभ आचार्य ने कृपा करके कहा अगर हम तुमको भगवत लीला अगर तुमको दर्शन करा दे तो क्या फिर तुम गाओगे? कहते ठीक है, जाओ यमुना में स्नान करके आओ। यमुना में स्नान करके आए और वल्लभ आचार्य ने उनको दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध दिया। पुष्टि मार्ग में दीक्षा को ब्रह्म संबंध बोलते, ब्रह्म के साथ, ब्रह्म मतलब भगवान, उनके साथ जुड़ना, ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध दिया उनको। गुरु से जब दीक्षा प्राप्त की उन्होंने और हृदय तो शुद्ध था ही, तो भगवत रूप और भगवत लीला उनके हृदय में अभी दिखने लगी। आंखों से कुछ नहीं दिख रहा लेकिन हृदय में दिखने लगी। सूरदास जी के विषय में तो ऐसा कहते थे कि उनके आंख का एक खड्डे वाला हिस्सा नहीं था, सब सपाटी था, चमड़ी सीधी सीधी थी, ऐसा उनका रूप दिया था भगवान ने। लेकिन अब हृदय में दिखने लगा तो आचार्य जी ने कहा आपको कुछ दर्शन हुए अब वही वर्णन करो। तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सुंदर नील सरो सरोना बालक आपकी गोद में बैठा हुआ है, ये मुझे दिख रहा है। आचार्य जी प्रसन्न हो गए कि इसको वास्तव में भी लीलाओं के दर्शन हो रहे, और जैसे दर्शन हो रहे वैसे पद गा के वर्णन करते। वो हर चीज को गा गा कर बताते थे, ये उनका विशेषता थी, उनका स्वभाव था ऐसा। तो आचार्य जी ने सोचा कि इनको और भी कुछ दे दिया जाए, तो 3 दिन और वहां पर रुके और शुभोदिनी और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम 3 दिन में और रुक के उनको पढ़ाया वहां पर। और ये पढ़ाने के बाद वो ज्ञान के भंडार बन गए सूरदास जी। ना स्कूल, ना कोई गुरुकुल पाठशाला, ना देखना, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सब हृदय में प्रकट हो गया उनके। तो उन्होंने कहा चलिए अभी गोकुल चलते हैं। तो वल्लभ आचार्य जी के साथ में गोकुल आए। गोकुल की भूमि में प्रवेश किए तो गोकुल में जो जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई थी वो सारी लीलाएं सूरदास जी के मन में प्रकट हो गई और वो गाने भी शुरू कर दिए उन्होंने लीलाओं को। ये कहते हैं ये तो बढ़िया पद निर्माण करते हैं और सटीक बिल्कुल वैसा गाते जैसे लीला हुई वो वैसा सटीक गाते हैं। फिर इनकी एक फिक्स सेवा लगा देते हैं, कहते आपकी कोई सेवा लगाएंगे तो करेंगे, कहते जरूर करेंगे, कहते चलो फिर हमारे साथ यहां से गोवर्धन, और गोवर्धन ले गए। उस समय गिरिराज जी के ऊपर गोपाल जी भगवान विराजते थे, जिनको प्राकट्य माधवेंद्रपुरी जी ने किया था और बाद में वल्लभ संप्रदाय के लोग उनकी सेवा करते थे, तो उस समय वल्लभ आचार्य के अंतर्गत उनकी सेवा पूजा होती थी। वल्लभ आचार्य के शिष्य पुत्र थे विट्ठलनाथ देव जी, उनकी निगरानी में सब कार्यभार चलता था। तो गोवर्धन में ले गए और उनको गोपाल जी के दर्शन कराए, और गोपाल जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने गोपाल जी के भाव के अनुरूप, क्योंकि उस गोपाल जी ने गोवर्धन धारण किया तो 7 वर्ष के थे उस समय वो, तो नंदलाल के रूप में उन्होंने गोपाल जी की खूब ख्याति गाई। तो वल्लभ आचार्य ने बोला आपने मंदिर में रहना और भगवान की जैसे जैसे आरती होती है, जैसे जैसे अष्ट प्रहर बदलते हैं, भगवान का जैसे मूड बदलता हो है, वैसे वैसे आपने भगवान के सुख के लिए पद गायन करते रहना। इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है हम इसको स्वीकार्य करते हैं। तो इनके पद गायन इतने मधुर हुआ करते थे, गला भी अच्छा था और गायन करने की कला भी अच्छी थी, जो कवित्वता थी ना, जो पद बिठाना वो भी उनकी अच्छी थी। तो उनके पद जो सुनता ना वो भी अपने अपने आप दोहराता रहता। तो एक दिन तानसेन के पास उनका पद पहुंच गया, तो तानसेन ने वो पद अपने जीविका के निर्वाह के लिए अकबर को सुनाया, क्योंकि वो उसका वहां नौकरी करता था। अकबर को सुना तो उसको अच्छा लगा कि पद तोड़ा है अच्छा है, तो उसने कहा कि आप ये कहां से लाए पद। उसने बताया कि ऐसे एक सूरदास जी है गोवर्धन में, उनका यह पद है, कहते उनसे फिर मिलते हम। वो मिलने के लिए आया और आके उन्होंने उसने बड़ी विनती की कि हमको कुछ गाकर सुनाएंगे क्या। इन्होंने बड़े भाव अवस्था में गाकर सुनाया, तो इनको लगा अकबर को ये जिस प्रकार भाव अवस्था में गाकर सुनाते वास्तव में ऐसा भाव है भी कि नहीं, कि भी सारा भाव आखिर में धन के तोले तुल जाता है। तो अकबर ने कहा एक काम करो, हम आपको है ना कुछ गांवों की जागीरी पट्टी लिखकर दे देते हैं। अब ये समझ गए कि ये भाई हमको पैसे से बहलाना फुसलाना खरीदना चाहता है। उन्होंने कहा हमको कोई आवश्यकता नहीं इसकी। उसने बार बार विनती की लेकिन उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तब उसको समझ में आया कि ये वास्तव में भगवान के लिए भाव से गाते, ये पैसों के लिए नहीं करते सारा कार्य। हमारे गोस्वामियों के भी कई प्रसंग में आया है कि अकबर उनको मिलने आया था, लेकिन कोई ऐसा प्रसंग कहीं वर्णन में नहीं आता कि वो कोई अच्छा व्यक्ति बन गया था और भक्त बन गया था, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता। मिलने आया था वो कई जगहों पर सुनने को आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि को भी मिलने आया था, क्योंकि वो आगरा जाते समय बीच में वृंदावन रुका करता था। अकबर की एक पत्नी थी जोधाबाई, वो हिंदू थी, राजपूताना घर से थी, कृष्ण के प्रति उनका बड़ा प्रेम था। यमुना स्नान करने के लिए आई, यमुना स्नान करते समय उसने देखा कि यमुना के किनारे पर नवजात अवस्था की सुंदर सी कन्या, जैसे उसमें से चमक निकल रही है सोने जैसी, और बिल्कुल मुलायम सी कन्या ऐसे खेल रही है। जोधाबाई ने जाके देखा तो उसको बड़ा सुख मिला उसको देखकर। इसने देखा तो यहां कोई है ही नहीं, ये कन्या किनकी है। उसको लगा भगवान ने कृपा करके मुझे दी है, वो उनको महल में ले आई और अपनी पुत्री बनाकर उसका पालन पोषण किया उन्होंने। जब वो कन्या 11 वर्ष की हो गई थी तो एक दिन क्या देखती है कि उसकी माँ के श्रृंगार पेटी को खोलना चाहती है। तो माँ बड़ा उत्सुकता पूर्वक देख रही कि बेटी क्या कर रही है। तो उसने श्रृंगार पेटी खोली और इतना अद्भुत श्रृंगार किया और छत पे जाकर खड़ी हो गई। माँ भी पीछे पीछे गई, उसने देखा कि बेटी छत पे जाके खड़ी हो गई और काफी देर तक वहां छत पे खड़ी रही, फिर नीचे आ गई। अब ऐसा उसने कई दिन जब देखा ना, तो एक दिन उत्सुकतावश पुत्री से पूछा कि तुम श्रृंगार करके जैसे छत पे जाके क्यों खड़ी होती हो, क्या कारण है इसका? कहते ये संध्या के समय में कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय लेके आते हैं, गौधूली का समय है तो मैं उनको देखने जाती हूँ, वो मेरे प्रियतम लगते हैं, तो मैं मलिन वस्त्र पहन के ऐसे जाऊंगी तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए मैं तैयार होकर जाती हूँ ताकि वो मुझे देखे तो उनको अच्छा लगे। जोधा भाई का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं, इसने कब कृष्ण को देखा, कब प्रेम हुआ कृष्ण के साथ इसका, मेरी बेटी के इतनी महान भक्त है भगवान कृष्ण की। ये लीला क्या घटित होती है, जो उद्धव जी ने ललिता जी को कहा था ना कि तेरे को यवन घर जाना पड़ेगा, तो यहां जोधाबाई की पुत्री बनकर आई है। लेकिन निस्तार क्या था, दोनों एक दूसरे को जब मिलोगे ना तो दोनों का श्राप टल जाएगा, यह निस्तार था उसका। अभी जब अकबर को समाचार मिला इस बात का तो उसने जोधाबाई से पूछा, तो उसने कहा ये मेरी धर्म पुत्री है और वो इस प्रकार से श्रृंगार करके जाती है। अकबर ने विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन जोधाबाई क्या हुआ, बड़ी दुखी सी बैठी थी, तो बेटी आई माँ से पूछती, माँ क्या हुआ? कहती अभी मैं बूढ़ी हो चली हूं ना, तो ये मेरे पर ध्यान नहीं देते, अभी अकबर मेरी उपेक्षा करते हैं। तो कहती माँ आज मैं तेरा श्रृंगार करती हूं, देखते आज तुम्हारी कौन उपेक्षा करता है। अब ललिता सखी को श्रृंगार करने का इतना अभ्यास है ना, अनंत अनंत काल का अभ्यास है, क्योंकि वो तो राधा रानी का श्रृंगार करती है गोलोक वृंदावन धाम में। अब उन्होंने अपनी माँ का श्रृंगार किया, अकबर आया देखा तो इतना आकर्षित हो गया जोधाबाई से, कहते आज तुम्हारा रूप अद्भुत दिख रहा है, ये कैसे संभव हुआ? तब उसने बताया कि मेरी जो धर्म पुत्री है ना उसने किया है। कहते वाकई में सुंदर श्रृंगार किया है। तो अकबर क्या कहता है, फिर मैं उसे विवाह कर लेता हूं, देखो फिटे मुंह तेरा। आखिर में सोच के क्या सोचा उसने, विवाह कर लेता हूं, ये एक नहीं सुधरेंगे कभी जीवन में, विषयों के कीट है ये सारे, इसलिए ज्यादा सहानुभूति भजन मार्ग में आ जाए तो बराबर सहानुभूति, अन्यथा कोई सहानुभूति के विशेष स्थान नहीं होते इनके इनके लिए कोई, क्योंकि जो पुत्री है उससे विवाह कोई करता है? अरे कोई मर्यादा, कोई आचार व्यवहार, कोई वर्णाश्रम पद्धति है कि नहीं है? बस जानवरों जैसा ही जीवन जीना है, अरे जानवर करते हैं ऐसा काम, इसलिए तो यवनों को वर्णाश्रम पद्धति में भी नहीं मानते, शूद्र से भी ज्यादा अंतेज में आते हैं, यमन और ये मलेच्छ पुलिन खून असाध ये सब अंतेज में आते हैं, शूद्र तक भी फिर मनुष्य है, वर्णाश्रम पद्धति में मौका है भक्ति करके आगे बढ़ने का। अंत्यजों के ऊपर तो अगर महाभागवत कोटि का कोई वैष्णव कृपा करे और उनकी बुद्धि फेर के लाए तो ठीक, बाकी वर्णाश्रम पद्धति से भी गए गुजरे उनका तो कोई उद्धार का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। चैतन्य महाप्रभु ने आके हरिनाम का रास्ता फैलाया तो एक उम्मीद मिली है कि उन लोगों को भी तरने का मौका मिलेगा, अन्यथा बढ़िया कठिन था यह। अब जैसे उसने सोचा ना, देखो अपराध किया ना एक महान भक्ता के चरणों में, उसका शरीर इतना जला इतना जला, अनेक वैद्य बुला दिए, राज वैद्य बुला दिए, महान से महान उपचारक बुला दिए, उसकी जलन ही शांत नहीं हो रही है, तड़प रहा है एकदम। तब बिरबल ने सुझाव दिया, महाराज ये जो तड़प उत्पन्न हुई है ना, ये किसी महान वैष्णव के चरणों का अपराध है। ये मात्र सिर्फ शरीर का तड़प नहीं है, ये अपराध के कारण जन्मा ही है। अब ऐसे अपराधों का तो जो समाधान महान वैष्णव बता सकते, अभी यहां पर तुलसीदास जी और सूरदास जी दो ऐसे महान वैष्णव हैं, दोनों में से किसी को बुला के पूछिए, वो बताएंगे आपको इसका सही कारण। तब सूरदास जी को बुलाया गया, वो आ नहीं रहे थे। संतों को क्या पड़ी ऐसे विषयी राजाओं के महल में जाने की, वो क्यों जाने लगे, उनको क्या उनसे स्वार्थ था। लेकिन एक संत हृदय की ऐसा भी होता है कि जीव के प्रति थोड़ा दयालु भी हो जाता है, जब तड़पता देखते ना तो बड़ी विनती की ना, तब आए आए और अकबर को देख के ही बोले कि इसने भक्त अपराध किया है। कहते क्या इसका परिणाम, कहते माफी मांगो उससे। अकबर से माफी मंगवाई। और जब सूरदास जी उससे मिले ना, जब ललिता के रूप में जो प्रकट हुई थी कन्या, उससे जब मिले ना, तो वो कन्या का श्राप तो मिट गया, वो तो उसी समय धाम चली गई। सूरदास जी भी नहीं जाना था, दोनों के प्रति यही विधान था कि दोनों जब एक दूसरे को जब भी कभी मिल जाएंगे तो उसी समय दोनों का श्राप निकल जाएगा। लेकिन सूरदास जी कहते मेरे को यहां रहना है, जी भर के भगवान के गुणगान गाने, भक्ति करने का बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रुक के आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा। सूरदास जी रह गए। सूरदास जी वापिस आ गए अपने ब्रजमंडल में और भगवान की नित्य प्रतिनित्य राग की सेवाएं गाते रहते। एक दिन गोकुल में गए, विठलनाथ जी को मिले। विठलनाथ जी ने कहा कि कुछ भगवान के श्रृंगार के विषय में कुछ गा के बताइए। कहते ठीक है। विठलनाथ जी ने यहां श्रृंगार करना शुरू किया और एक 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 श्रृंगार जैसे शरीर के ऊपर लगे ना, कि भगवान को पहले पोछा जाए, फिर भगवान को कपड़े पहनाए जाए, उत्तरी पहनाई जाए, और एक 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 श्रृंगार जैसे भगवान के शरीर पे चढ़े ना, वो एक 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 श्रृंगार का एक 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 पद गा गा के बोलते जाए साथ में। जैसे उनका पद गायन अगर लाइन से पढ़ा जाए तो ऐसा लगे कि पद गायन में श्रृंगार हो चल रहा है, एक 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 कदम आगे बढ़ रहा है श्रृंगार। विठलना जी बोले अद्भुत कला है। उन्होंने क्या किया, संस्कृत में श्लोक बोल के उस श्रृंगार का वर्णन किया, तो उन्होंने किया कि संस्कृत के भाव को बिल्कुल वैसा का वैसा बिठाते हुए अपने पद में उसी पंक्ति को गाकर उन्होंने वही भाव वापस बिठाए। उन्होंने दोबारा संस्कृत का पद गाया, श्लोक गाया, तो उन्होंने दोबारा उसी संस्कृत श्लोक का पद गायन करके वैसा ही भाव वापस बिठा दिया। तब विठलनाथ जी माने के आश्चर्य है, इतनी अद्भुत कला है इनके पास भगवान के रूप को वर्णन करने की। कहते आंखों से देखने वाला व्यक्ति गूर गूर कर देखे तो भी भगवान के श्रृंगार का कुछ भाग छोड़ सकता है, लेकिन सूरदास जी की आंखें नहीं थी, लेकिन वो जो श्रृंगार का वर्णन करते थे ना अपने पद के अंदर, वो एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ते थे कि भगवान के कानों में कुंडल का आकार और उसमें पड़ा मोती, मोती का कलर और उसकी शोभा तक भी सब कुछ लिख देते थे, एक छोटा हिस्सा भी नहीं छोड़ते थे, जितना तो आंखों से दर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं देखता। अब ये जब अद्भुत महिमा जब सुनी ना, सबने अनुभव भी की वहां पर। दूसरे दिन विठलनाथ जी को गोवर्धन की तरफ जाना था, सूरदास जी भी चल पड़े साथ में गोवर्धन जी जाने के लिए, तो विठलनाथ जी के जो पुत्र थे उन्होंने रोक लिया, नहीं नहीं आप रुकिए ना, रुकिए ना, आग्रह करके रोक लिया। विठलनाथ जी के जो पुत्र थे उनके मन में आया कि ये जो हमारा श्रृंगार हो रहा है वो तो हमारी परंपरा पद्धति के अनुसार नियमित रूप से वैसा हो रहा है कि सुबह का श्रृंगार ऐसा होता है, शयन का श्रृंगार ऐसा होता है, तो ये तो क्या है, उनके ध्यान में आया इसलिए उसको गाते रहते उसी बात को, क्योंकि नियमित सेवा, इसलिए उनको पता है कि इस समय क्या होने वाला है, इसलिए वो गा देते हैं। हमको नहीं लगता कि उनको सारी चीजें एक 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 कण कण महसूस होता होगा या अंतरात्मा में दिखता होगा। तो उनके पुत्रों ने उनको बरबस रोक लिया वहां पर और रुक भी गए। फिर आपस में गोविंद राय जी और बालकृष्ण जी और गोकुलनाथ जी सब मिले, ये सब विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे, और चर्चा की के आज इनकी परीक्षा करते हैं। तो उनमें जो सबसे बड़े थे ना गिरधर जी, बड़े भाई, उनको कहा आज आप ऐसा श्रृंगार करो जो हमारे नियमित रूप से होता है ना उससे अलग, और फिर ये अगर उसका वर्णन करे तो मानने का कि इनको सब दिखता है। गिरधर जो थे उन्होंने कहा कि एक महान वैष्णव की ऐसी परीक्षा तो नहीं लेनी चाहिए, ये तो उचित बात नहीं है। तब इन्होंने कहा हम परीक्षा नहीं ले रहे, लेकिन उनका महान गुण कितना महान है वो प्रकट तो हो, हमको भी तो उसका अनुमान हो, हमको अविश्वास नहीं है लेकिन उत्सुकता है। तो उनके बड़े भाई को उन्होंने समझा के तैयार कर लिया कि बस आप कुछ विशेष श्रृंगार करो आज। अषाढ़ का महीना था, गिरधर जी ने सोचा कि गर्मी बहुत है तो क्या किया जाए, भगवान को सिर्फ मात्र मोतियों से अलंकृत कर देते, मोती का कोपिन पहना देते, मोती का गले में एक छोटा सा पतला माला लगा देते, मोती का मुकुट पहना देते, मोती का कुंडल पहना देते, ताकि शरीर भी खुला रहेगा और गर्मियों में भगवान को सुख भी मिलेगा। जो नियमित श्रृंगार होता था वो सारा चेंज करके उन्होंने सिर्फ मोती वाला श्रृंगार कर दिया, वस्त्र आदि कुछ नहीं, भगवान बाल स्वरूप में। अब सूरदास जी से कहा कि कुछ भगवान के श्रृंगार के विषय में कुछ बताइए, कुछ वर्णन कीजिए। अब सूरदास जी तो पहले देखे और खूब हंसे, अब ये सब समझ नहीं रहे हंस क्यों रहे, तो देखी रही हरि नंगम नंगा जल सुत भूषण अंग विराजत वसन हीन छवि उठत तरंगा, देखी रही हरि नंगम नंगा। अभी कहते ओ सूरदास जी तो आश्चर्य कर गए, आनंद आ गया, भगवान का ये भी तो ऐश्वर्य है कि भगवान आभूषण भी ऐसे पहनते हैं, ना वस्त्र पहनो तो भी शरीर ढक जाएगा, और छोटे बालक के रूप में पुष्टि मार्ग में भगवान को पुत्रवत प्रेम किया जाता है, और कुछ ऐसे भक्त है जो थोड़ा साख्यवश प्रेम कर के अनुरूप प्रेम करते हैं, जो गोविंद सखा वगैरह थे। तो जब सूरदास जी ने उस रूप सटीक सटीक वर्णन कर दिया जब अपने पद में, तब सारे भाइयों को लगा कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि इनके ऊपर ऐसा अविश्वास करते हुए कि तो नियमित चलने वाला श्रृंगार बोल देते हैं लेकिन दिखता नहीं होगा, आज इनको सारा कुछ दिख रहा है और एक 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 चीज का बखूबी वर्णन भी कर रहे। तब सबने उनको नतमस्तक होकर माना कि वास्तव में आपको दिखने में ऐसे आंखें नहीं है लेकिन आपको हरि के संबंध में सब कुछ दिखाई पड़ता है। ये सूरदास जी की विशेषता थी, जगत की दृष्टि से नहीं दिखता। वहां से भी सूरदास जी गोवर्धन आने के लिए निकले ना, तो बिना जल का सूखा कुआ था उसमें गिर गए, नहीं दिखा। वैष्णव जगत को देखना भी नहीं चाहते, गिर गए अंदर। 7 दिन बीत गए कुएं में ही है, और कुएं में बैठे बैठे पद गायन कर रहे, भगवान की महानता गा रहे, इतने दुखी विभीषण जी थे जिनको प्रभु दुख से उबार के लंकापति बना दिया आपने, सुग्रीव दर दर भटकने वाला, कष्ट भुगतने वाला, उसको आपने पुनः अपना राज्य प्राप्त करा दिया। सुदामा के चार ही पदार्थ चार दाने खाए और सुदामा जी को संसार का ऐश्वर्य दे दिया आपने, सबके दुख उतारे। लेकिन ये सूरदास के ऊपर इतने निष्ठुरता है आपको, सबके दुख उतार रहे, प्रहलाद के दुख उतारे सबके, ये सुदामा अकेला दीनहीन रह गया निष्ठुर आपकी कृपा से। जब भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे थे ना, तब भगवान आए, हाथ लंबा करके सुदास जी को बाहर निकाले। भगवान का स्पर्श प्राप्त किया ना जब सूरदास जी ने, तब सूरदास जी को लगा भाई ये स्पर्श बड़ा कोमल भी है और सुखदाई भी है, कौन हो तुम? सूरदास जी को झट समझ में आ गया ये तो प्रभु ही है। सूरदास जी ने पहचान लिया प्रभु को तुरंत ही, क्योंकि जो दिन रात प्रभु की सेवा में लगे होते ऐसे प्रभु को कैसे नहीं पहचानेंगे। फिर कृष्ण के मन में भी आया कि एक बार इनको दर्शन करा देते हैं, लेकिन कैसे दर्शन कराए? राधा जी को भी बुला लाए और कृष्ण वहां जोर जोर से बोलने लगे, राधा जी उधर नहीं जाना, वो अंधा है पैर पकड़ लेगा। राधा जी कहते मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, कहते मैं सच बता रहा हूं, अंधा पैर पकड़ लेगा। अंधे लोग पकड़ते किसी को छोड़ते नहीं फिर, क्योंकि उनकी इच्छा होती है ना उनके पास में कोई बैठे बातचीतें करे। राधा रानी कहती मैं देखती हूं कैसे पैर पकड़ेगा। आई कहते बाबा ये मेरे मैंने पैर आगे किया, क्या तुम पकड़ लोगे? वो कहते मैं अंधा, मैं कहां पैर पकड़ूंगा, मेरे को क्या समझ में आएगा। तो कृष्ण उकसा रहे सूरदास जी को कि राधा बिल्कुल सावधान, झट में पकड़ लेंगे पैर, पता भी नहीं चलेगा। सूरदास जी कहते बार बार ये क्यों ऐसा कह रहे, पैर पकड़ लेंगे पैर पकड़ लेंगे, मैं नहीं समझ पा रहा क्या, ये पैर पकड़ने के लिए तो नहीं कह रहे कहीं? अब उन्होंने राधा रानी का पैर पकड़ लिया। देखो भगवान सामने से कृपा देने आते हैं, ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति राधा रानी का पैर पकड़ ले संभव है ऐसा कभी जीवन में? भगवान के नख अग्र का जो भाग है उसमें से जो निकलने वाला प्रकाश है ना, नखाग्र ज्योति जिसको कहते हैं, कृष्ण के अंगूठे के पैर के अंगूठे के आगे के हिस्से से निकलने वाला प्रकाश, उस प्रकाश का दर्शन भी योगी लोग अनंत अनंत समय तक नहीं कर पाते। और ऐसे ही राधा रानी का पैर पकड़ ले, ये कोई सामान्य वस्तु है? प्रभु कृपा करना चाहते हैं। राधा रानी का पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ा इतना आनंद। राधा रानी का पैर तो कृष्ण पकड़ते कितनी बड़ी बात है, तो कि राधा रानी सामने से चरण दिया, अब इतना सुख प्राप्त हो रहा है इनको। राधा रानी पैर झट से छुड़ा लिया तो पैर का जो बायल पहनी थी उसका जो नुपुर था ना, एक नुपुर इनके हाथ में आ गया। कहते बाबा जी मेरे को रास करने जाना है, लाओ मेरी पायल का नुपुर दे दो। नुपुर तो हम दे दे लेकिन दूसरे ने आके बोला ये मेरा था, फिर हम क्या करेंगे? हम नुपुर बराबर देखेंगे, ऐसे मिलाएंगे, लगेगा आपका है तो दे देंगे। तब भगवान कहते हैं अभी इनको कृपा दर्शन कराने का समय आया है। तब कृष्ण और राधा रानी दोनों आए, सूरदास जी को आशीर्वाद दिया, सूरदास जी के नेत्र खुल गए। जीवन पर कभी नहीं, जन्म से अंधे कुछ नहीं देखा, जिस दिन पहला दर्शन किया राधा कृष्ण सामने खड़े, इससे अच्छा जीवन में और देखना भी क्या है व्यक्ति को। हम विग्रह रूप में भी भगवान के दर्शन करते ना तो भी इतना अच्छा लगता है कि दो घड़ी खड़े रह जाते हैं। हमारे वृंदावन इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण का श्रृंगार होता है ना, आध घंटा तो कहीं नहीं गए व्यक्ति को वहां खड़े खड़े, अगर देखता रहे ना गुर गुर के, तो आध घंटे से पहले तो उसका मन ही नहीं करेगा कि यहां से थोड़ा साइड में हो जाओ, धक्का लगता रहेगा लेकिन खड़ा वही रहेगा। तो एक बाबा जी थे बड़े अच्छे संत थे, वो एक बार आए तो क्या कहते हैं कि ये लोग ऐसी सेवा करते ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण आके यहां बैठ जाते हैं, ऐसा अद्भुत कहते दृश्य होता है यहां पर। तो वाकई में भगवान इतने सुंदर दिखते हैं, और प्रत्यक्ष रूप में जब दर्शन करने देने आए जब भक्त को, तो कैसा रूप होगा उनका। सूरदास जी आंख भर के भगवान के दर्शन कर रहे, पहला दर्शन राधा कृष्ण का, इतना आनंद। भगवान कहते सूरदास जी आपकी कोई इच्छा है तो बोलो। कहते प्रभु पहले वचन दो कि इच्छा किसी भी हालत में पूरी करोगे तब मैं मांगता हूं। कहते सूरदास जी भरोसा नहीं हमारे ऊपर। कहते प्रभु बात भरोसे की नहीं, लेकिन बात पहले वचन दो आप मुझे। क्यों सूरदास जी ऐसा कह रहे हो समझ में आएगा। भक्तों को तो भगवान का ही भरोसा होता है, भगवान के भरोसे तो जी रहा होता है वो। तो बात भरोसे की नहीं, लेकिन वो जो मांगने जा रहे हैं वहां कृष्ण अपना वचन तोड़ भी सकते हैं शायद, इसलिए कहते पहले वचन दो प्रभु। कृष्ण ने कहा हम वचन देते हैं, तुम जो कहोगे उसको पूरा करेंगे। ठीक है प्रभु, आपके दर्शन किए, अब ये दोनों आंखें वापिस से ले लो, फोड़ दो इसको, अब नहीं चाहिए। जब सूरदास जी ने कहा ना तो राधा कृष्ण दोनों रोने लग पड़े। कहते क्यों ऐसा कह रहे। कहते प्रभु जगत का कुछ देखना नहीं मुझे, आपको देखा मन में आपकी छवि है उतना पर्याप्त है, जगत की कोई चीज मुझे देखने नहीं, ना उसमें पढ़ना है मुझे। सर्वत्र दुखी दुखे मात्र, देख के लाभ भी नहीं है कोई, इसलिए आंखें वापस निकाल दीजिए। आंखें रहेगी तो सब जगह घूमेगी, नहीं जानने वाली चीज जानेगी। आंखें नहीं रहेगी तो ये जो दृश्य है ना हमेशा स्मरण में बना रहेगा। भगवान का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा को मान्य करने के लिए वचन भी दे दिया, तो आंखें वापस ले ली कृष्ण ने, वहां अपना दर्शन कराया, आंखें वापस ले ली। तो इस प्रकार से सूरदास जी का भगवान के चरणों में अनुराग जो था ना, वो सिर्फ भगवान के चरणों में ही लगे रहना चाहते थे और कुछ नहीं। वो ही वास्तव में अनुराग है। राग ऐसा नहीं होता जो 25 जगह पर बटा हुआ होता है, ये अनन्य राग तो ऐसा होता है जो एक जगह बटा होता है, उसके लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व बलि कर सकता है, वही अनन्य राग होता है। 50 जगह 50 पदार्थों में सब जगह अटका हुआ है, वो राग नहीं है, वो तो विषय है। सूरदास जी अभी वहीं चंद्र सरोवर में जो परसोली गांव में वहां रहते थे, उनके पास में गोपाल नाम का एक बालक था जो उनकी सेवा कर दिया करता था। तो सूरदास जी कहते गोपाल मैं महाप्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूं, क्योंकि सूरदास जी को मंदिर से भगवान का प्रसाद आता था। मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूं, पानी का लोटा मेरे पास में रख देना। कहते ठीक है। गोपाल बालक था, थोड़ा चंचल स्वभाव का था, ध्यान नहीं रहा उसका। ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे और वो इधर उधर अभी रख देता हूं करके इधर उधर घूमा, और उतने में कोई वैष्णव मिले उनसे चर्चा करने लगा, और उसको ध्यान ही नहीं रहा, वो तो आगे बढ़ गया खेलते कूदते। सूरदास जी अब भगवत प्रसाद ग्रहण कर रहे, अब क्या हुआ कि नीवाला गले में फंस गया। अब बोला भी नहीं जा रहा किसी से कि भाई कुछ पानी लाओ, गला ही बंद हो गया, आंसू टपकने लगे, अभी प्राण कंठ पे आ गए ना, अभी क्या हुआ, सांस लेना कठिन होता जा रहा है, तड़प रहे ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे, कहीं पानी का लोटा ही नहीं है। सिन्हा जी भगवान ने क्या किया, उनका अपना सोने का जो पानी की झारी थी ना, वो पानी की झारी सिन्हा जी ने आके वहां रख दी। वैसे हाथ मार रहे थे ना, हाथ में लग गई, उन्होंने पानी पिया। फिर गोपाल जब आया तो क्या देख रहा है कि वो आचमन कर रहे और हाथ में सोने का लोटा है। गोपाल ने आके पूछा बाबा जी मुझे क्षमा कर देना, मैं लोटा रखना भूल गया था। कहते नहीं है ना लोटा, तो कहते ये तो सोने का लग रहा है, ये मैंने नहीं रखा, मैं तो भूल गया था वास्तव में। तो कहते भी लोटा कैसा है जरा मुझे बता। कहते बड़ा सुंदर लोटा है, सोने का लोटा है। अब इनको समझ में आया, अच्छा ये लोटा कौन रख गया होगा, तुम जाके पता कर, हाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में के वहां लोटा है कि नहीं, वहां लोटा नहीं है। कहते लोटे को अच्छी तरीके से साफ करके, उत्थापन आरती होगी ना उसके पहले पहले जाके गोसाई को दे आना। कहते ठीक है। गोसाई को देने गए, अब देखा कि भगवान का लोटा ये गोपाल लेके आ रहा है, तो गोसाई ने पूछा कि लोटा कहां से आया, उन्होंने सारी घटना विवरण कर दी। गोसाई कहते बड़े महान है सूरदास जी, भगवान को यहां से चिंता हुई, लोटा देके आ गए। जब शाम को सूरदास जी दर्शन करने के लिए जब आए ना, तो गोसाई जी ने उनकी बड़ी महिमा गाई कि ना श्रीनाथ जी को भी आपकी चिंता हो जाती है, आप इतने महान भक्त है। तो वो अपने आप को कहते हमारे जैसे अंधे को कौन पूछता है, अंधों को कौन प्रेम करता है, ये तो भगवान दयावश जैसे पशु पक्षियों की भी चिंता कर देते, ऐसे हमारी भी कर देते। अपने आप को हमेशा हीन ही समझते थे। जब कभी अपने आप को हीन समझने वाले भजन गाया करते थे ना, तो एक दिन गोसाई जी ने कहा कि सूरदास जी अपने आप को हीन कहने वाले भजन ना गाओ, भी सिर्फ भगवान के लीलाओं का गुणगान करो, क्योंकि आप कितने महान और कितने विनम्र है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को बार बार ऐसे हीन मत बताओ। तो उनकी आज्ञा से फिर ठीक है, कहते आज से फिर अभी हरि के भजन ही गाएंगे, उनका ही गुणगान करेंगे। अब वो जिस रास्ते से नाथ द्वारा में उधर गोवर्धन में भगवान के दर्शन करने जाते, तो गोवर्धन के पास नीचे तलेटी पर ही एक वैश्य बड़ा लोभी वणिक, उसकी दुकान पड़ती थी। वो सोचता था यहां पर बहुत सारे वैष्णव हैं, तो वैष्णव मेरी दुकान पे है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कई बार लोग किसी संस्था में इसलिए जुड़ जाते ताकि बिजनेस अच्छा चले। चल पड़ा बिजनेस, क्या करोगे आगे, अभी फिर तो शरीर छोड़ोगे ना, जीवन तो जाएगा ही ना। अरे हरि मंदिर ये तो संप्रदाय का जो ये मार्ग होता है ना, ये तो सिर्फ प्रभु भजन करने के लिए होता है। कभी विदेश जाने के लिए जुड़ते हैं, कभी विवाह करने के लिए जुड़ते हैं, अरे सब चीजें मिल भी जाएगी, लेकिन इसे लाभ क्या ज्यादा। इसने क्या किया, कभी नाथ श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं गया था ऊपर गोवर्धन पे, लेकिन झूठ मूठ की कंठी माला पहनता था, तीक 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 तिलक करता था और शिखा रखता था और वैष्णव बन के रहता था, ताकि वैष्णव देखे कि अच्छा है भक्त है तो उसकी दुकान पे जाए। तो सारे वैष्णव ना उसी की दुकान पे जाते, और ऐसा लोभी ना खूब माल लूटता। सूरदास जी भी वहां से आते जाते, तो कभी सूरदास जी को उसने छेड़ दिया, महात्मन सारे वैष्णव हमारे वहां से आते हैं कुछ ले जाते, आप कभी नहीं ले जाते हमारे यहां से। सूरदास जी चुप रहे, कुछ बोले नहीं। दूसरे दिन छेड़ा, तीसरे दिन छेड़ा। सूरदास जी ने बोला भाई तुमने हमको छेड़ा है तो आज तुम्हारा उद्धार तो करना ही पड़ेगा। नजदीक गए और जाके बोलते मैं तुमको जानता हूं, तुम वैष्णव नहीं हो, झूठ मूठ की कंठी पहनते हो, झूठ मूठ का तिलक करते हो, मैं जानता हूं तुमको, तुम ये ग्राहक ही करने के लिए कर रहे हो सारा कुछ। ओ कहते आप किसी को बताना नहीं। हाँ कहते लेकिन ऊपर एक बार श्रीनाथ जी के दर्शन करने तो चल। कहते कल मैं चलता हूं पक्का। सूरदास जी आ गए, कहते चलो दर्शन करने के लिए। कहते अभी सवेरा है, अभी तो बोनी भी नहीं हुई, बोनी तो हो जाए पहले, बाद में आता हूं। और राजभोग के समय में गए, कहते अभी तो बहुत सारी महिलाएं सामान लेने आती है। कहते ठीक है। संध्या के समय में गए, कहते अभी संध्या के समय में क्या होता है, वो दुकान में दिया बत्ती करनी होती है, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी तो भी सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अभी नहीं आ सकता। टालम टोल करता करता 3 दिन गुजार दिए। बार बार सूरदास जी के भाई चल अब तो दर्शन करने चल, वहीं नीचे रहता है बस ऊपर दर्शन करने चलना है, लेकिन जाए नहीं, कोई ना कोई बहाना बना दे, अभी ये है अभी वो है। सूरदास जी आखिर में झुंझलाए, कहते ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ना थोड़ी आंख दिखानी पड़ेगी अभी। कहते मैं सबको बता दूं तू झूठ मूठ का वैष्णव है, कोई तेरे दुकान पे नहीं आएगा आगे से, तू चल रहा है कि मैं सबको बताऊं? कहते नहीं नहीं आज चलता हूं, ले गए। अब सूरदास जी ने भगवान से खूब प्रार्थना की, प्रभु ये आपकी ध्वजा के नीचे रहता है लेकिन माया में ऐसा पड़ा है ना कि आपके प्रति अनुराग नहीं है, कृपा करो आपके प्रति जुड़ जाए। जैसे रामानुजाचार्य ने धनुदास जी के लिए प्रार्थना की थी रंगनाथ जी से, प्रभु एक बार इसको अपने दर्शन कराओ, ये जीवन भर अपनी पत्नी का मुख नहीं देखेगा, बाद में जब आपका दर्शन कर लेगा ना, संभव नहीं है कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहे। और रामानुजाचार्य की कृपा से धनुर्दास जी को रंगनाथ जी के दर्शन हुए थे, फिर तो उनका पूरा भाव ही बदल गया, बड़े महान भक्त थे धनुर्दास जी भी। अब सूरदास जी के बहुत अनुनय विनय करने पर सिन्हनाथ जी ने मान्य कर लिया। अब क्या हुआ, उसकी तो कोई योग्यता नहीं थी लेकिन महान वैष्णव जी ठान लिया ना इसका उद्धार करना ही करना है। अभी जैसे नारद मुनि ने सोचा है कैलाश का उद्धार करना ही करना है, चाहे कुत्ता बन गया तो गए, सांप बन गया तो गए, उंदर बन गया तो भी गए, लेकिन उद्धार तो करना ही करना है। आखिर में नहीं बाहर निकलता था तो उसके शरीर में से खींच के ले गए, भाई चल तू माया में पड़ा ऐसे तो जाएगा नहीं। अब भगवान के जब दर्शन किए ना बनिए ने, अब इसकी तो सुध बुध जाती रही, इतने अद्भुत दर्शन है प्रभु के, मैं तो व्यर्थ में समय जा रहा था मेरा, मैं तो प्रभु को भूलकर ऐसे इतना जीवन, 60 साल मेरी उम्र हो गई, इतना जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिया भगवान से दूर रहकर, अभी पश्चाताप कर रहा है। अभी सूरदास जी से कहता है कृपा करो, कैसे भी कृपा करो, गोस्वामी जी से प्रार्थना करो कि बस मेरे को ब्रह्म संबंध दिला दे, मेरे को दीक्षा दिला दे, बस कृपा करो। कहते तुम कल दोपहर में आना राजभोग के बाद, हम गोसाई जी से बात करेंगे। सूरदास जी ने कहा कि गोसाई जी कृपा करो इसके ऊपर, अभी इसकी अंतरात्मा जागी है, जीवन तो करीब करीब पूरा हो गया, 60 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी मन कर रहा है तो कृपा करो उसको। गोसाई जी कहते भाई तुम बूढ़ा बैल नाथ कर ले आए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बूढ़ा बैल नाथा नहीं जाता, उम्र होने के बाद भक्ति नहीं लगती, हमने बड़े लोग देखे इतने ढीठ परेशान हो जाओ समझा समझा के, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उनके उनको, क्योंकि इतना विषय भोगे, इतना जीवन जिया ना कि हृदय ऐसा कठोर बन गया कि भजन मार्ग में अभी जाता ही नहीं, बैठे रहेंगे समय बर्बाद करेंगे लेकिन भजन मार्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए हमारे वैष्णव और प्रहलाद जी आदि कहते भक्ति बचपन में होती, छोटे होते तब होती है, पीछे कुछ नहीं होता है, पीछे तो बस शरीर की व्यथा ही होती है। तो विट्ठलनाथ जी कहते भाई बूढ़े बैल को नाथ के ले आए, बड़ी बात है, अब तुम लाए हो तो कृपा करनी पड़ेगी फिर इसके ऊपर भी। कहते ठीक है ले आओ उसको, स्नान करा के ले आए और उस दिन उन्होंने उनको दीक्षा दे दी। अब दीक्षा दे दी ना तो उसने अपने जीवन काल में 60,000 रुपया जोड़ के रखा था, कब 500-600 वर्ष पहले 60,000 रुपया उसने लाके गोसाई जी को अर्पण कर दिया, इसकी साधु सेवा करो, अब जीवन में कुछ नहीं करना, अब सिर्फ प्रभु भजन ही करना है। तो कहते हैं कि एक महान वैष्णव की कृपा से, जिसका तो पैसा ही परमेश्वर था, ऐसा बनिया अभी वैष्णव की कृपा से भक्त बन गया। और अभी उसका क्या नियम रहा, सिन्हा जी के मंदिर में दिन भर बैठे रहता है और वहीं पर प्रभु की जो सेवा मिले वो सेवा करता। अब दुकान तो देखते ही नहीं, दुकान की तरफ तो मन ही नहीं उसका। तो ये जो चित्त है ना, जहां लगा हुआ लग जाता है, हम भगवान में लगाते नहीं। अगर एक बार भगवान में भी लग जाए ना तो वहां से उखड़ता नहीं, फिर निकालना कठिन हो जाता है। माया में लग जाए तो माया से भी निकालना कठिन पड़ता है। इसलिए संसार में कहीं चित्त को लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। हम बड़ा खुशी खुशी जा तो रहे, आनंद आ रहा है, मजा हो रहा है, लेकिन अगर चिपक जाएगा ना वहां निकाले से निकलेगा नहीं, फिर बाद में मृत्यु आ जाएगी। पता भी रहेगा सब कुछ हाथ से जाने वाला है, लेकिन उसको खींचोगे ना बाहर निकालने के लिए, वो हटेगा ही नहीं वहां से। इसलिए व्यक्ति को वैष्णव के मार्गदर्शन में उनकी कृपा से संसार में अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ऐसी आशा है कि मृत्यु तक ये वहां से उखड़कर यहां चिपक जाएगा भगवान के चरणों में, तो ही उद्धार होगा। अन्यथा तो समझो नरक सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ ना करो तो एक जगह पर तो निश्चित जाना ही जाना है हमने, वहां जाने के लिए कोई नहीं प्रयास करोगे ना तो भी अपने आप जाना जाने को मिलेगा, यही वास्तविकता है। सूरदास जी ने सोचा कि मैं भगवान के पद गायन तो करता हूं लेकिन 125,000 पद गायन का संकल्प पूरा करता हूं। एक तरफ से भगवान अभी बार बार उनको प्रेरणा दे रहे कि तुम मेरे धाम आ जाओ, और उनके मन में संकल्प आया कि 125,000 पद गायन करता हूं भगवान के, 1,00,000 पूरे हो चुके हैं। अब भगवान कहते हैं अब तुम मेरे पास आओ, मेरे को बड़ी इच्छा हो रही है। अब ये कहते हैं प्रभु 125,000 पद गायन करना विचार, अब क्या करे। उतने में क्या हुआ, किसी ने आके कहा कि आपके तो 125,000 पद गायन पूरे हो गए, आपने गिने नहीं क्या। कहते नहीं भाई मुझे पता है मैंने 1,00,000 पद गायन किया है, 125,000 नहीं हुआ। अरे कहते आप अपनी सूर सागर, जो उन्होंने पदों की जो रचनावली की थी ना सूर सागर, उसको देखो उसमें गिनती करो 125,000 है। गिनती की तो निकले तो 125,000, लेकिन क्या हुआ 1,00,000 पद सूरदास जी के थे और 25,000 ऊपर से जो कम पड़ रहे थे ना वो सूर श्याम नाम के भगवान ने लिख दिए थे। सूर और श्याम, भगवान ने 25,000 और मिला लिए, कहते तेरा हो गया ना 125,000 का काम पूरा, अब तुम मेरे धाम आया। अब एक बड़ा संपन्न व्यक्ति था, उसको लगा कि इनके 125,000 पद में एकत्रित करूं, तो उसने सबको कहा कि तुलसीदास जी के एक पद लाने वाले को एक मोहर मिलेगी, अगर कोई एक पद ले आएगा तो एक मोहर में दूंगा। उनको था कि इतने सुंदर सुंदर पदों को इकट्ठा करके रख लेता हूं मैं। अब क्या हुआ, लोभ के वश होकर लोगों ने अनेक पद बनाए, नीचे सूरदास जी का नाम डाल देते और अनेक पद बना बना के लाल आके जमा करा दिए। अब सूरदास जी ने लिखे थे 125,000, उनके पास 250,000 से भी ज्यादा पद इकट्ठे हो गए। जगत के लोग पैसे के लिए ना क्या करते। अब ये सोच में पड़ गया, 125,000 ही उन्होंने लिखे, 250,000 कहां से आ गए। अब कहते इसमें से आधे झूठ है, अब कैसे पता चलेगा आधे झूठ कौन से है। तो वो जो लाने वाले कहते हैं हम तो सही लाए, लेकिन उनको विश्वास था कि तुलसीदास जी के पद सामान्य नहीं थे। उन्होंने जितने भी पद लाए गए थे ना सबको कहते फेंको नदी में, सबको यमुना में डलवा दिया, और जितने सूरदास जी के द्वारा लिखे पद थे ना वो सारे के सारे सूखे के सूखे, और बाकी जो पद थे ना वो गीले होके बह गए, और 125,000 बच गए, वो 125,000 निकाल लिए वापिस। ऐसी लीला तुकाराम महाराज जी के साथ भी हुई थी। देहू गांव के पास तुकाराम महाराज जी थे, देहू गांव में रहते थे इंद्रायणी नदी के किनारे पर। तो तुकाराम महाराज जी ने भगवान विट्ठलनाथ जी के लिए अभंग लिखे थे जिनको महाराष्ट्र में खूब गाते हैं। इतनी सुंदर रचना की तो उन्होंने भगवान के लिए, तो दुष्ट लोगों ने क्या किया था, उनकी अभंग की पोथी थी ना उसको बहा दिया था इंद्रायणी नदी में। ये बड़े दुखी हुए थे, लेकिन क्या हुआ उनके सारे के सारे अभंग नदी के ऊपर तैर रहे थे, और नदी में से निकाले ना तो सब सूखे के सूखे निकले बाहर। भगवान विष्णु के साथ में रहते हैं। अभी भगवान की इच्छा थी, सूरदास जी भी भगवान की इच्छा से सहमत हो गए। गोसाई जी कहते कि सूरदास जी तो सुबह मंगल आरती से लेके शयन आरती तक हर भावपूर्ण दर्शन भगवान के सामने बैठ के गाते थे, आज सूरदास जी दिख नहीं रहे। किसी ने कहा सूरदास जी आए थे एक ये दर्शन करके चले गए, और बड़े शांत शांत थे। गोसाई जी को तुरंत भनक लग गई, मैं अभी राजभोग आरती करता हूं, मैं सीधा उधर आता हूं, तुम अभी जाओ वहां पर, तुरंत भागो। सूरदास जी अपने जीवन के आखिरी दिनों में थे और राह देखते थे कि गोसाई जी आए और गोसाई जी आशीर्वाद दे और भगवान का स्मरण करते करते धाम चले जाए। अभी गोसाई जी भगवान की आरती कर रहे, लेकिन उनका चिंता लगी है सूरदास जी के प्रति। जैसे तैसे राजभोग आरती पूरी हो गई तो गोसाई जी रामदास जी कुंभन दास जी गोविंद स्वामी सबको लेकर चले, चलो कहते सूरदास जी के पास चलना है। सबको लेकर वहां पारसोली में आए, सूरदास जी ऐसे जमीन पे लेटे, अब तो कुछ बोल भी नहीं रहे। गोसाई जी आए, उन्होंने तुरंत सूरदास जी का सर अपने गोद में रखा, हाथ फेरा। सूरदास जी कहते कौन? अच्छा गोसाई जी आए, आपने प्रभु आए, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। गोसाई जी कहते सूरदास जी आपका चित्त कहाँ चल रहा है अभी? तो सूरदास जी ने राधा रानी उस समय नंद भवन में भगवान कृष्ण की सेवा के लिए गई है, उसकी लीला चर्चा चल जो हो रही है, सूरदास जी का चित्त वहां अटका हुआ है। उन्होंने बता दिया लीला जो दृश्य देख रहे थे ना मध्याह्न के समय में, उस लीला का वर्णन कर दिया उन्होंने। फिर थोड़े समय के बाद सूरदास जी को कहते सूरदास जी आपकी नेत्र वृत्ति, आपके नेत्र कहाँ की ओर गमन कर रहे हैं? तो सूरदास जी ने अपने नेत्रों को भगवान के रूप माधुरी का वर्णन करने में टिकाए थे ना, उसका वर्णन किया। जब उन्होंने, जब सारी परिस्थिति उचित थी ना, तो सूरदास जी एकदम से थोड़े उदास जैसे हो गए। तो उतने में वहां उपस्थित एक वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि अभी जाने की कगार पे आप उदास क्यों है? कहते जीवन भर ब्रज की इस भूमि की तरफ मुंह करके जिया हूं, और आज जाने के समय ब्रज की तरफ पीठ करके जा रहा हूं। तो वैष्णव लोगों को समझ में आ गया कि ये लेटे हुए तो उनकी जो पीठ है ना वो भूमि को लग रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं पीठ करके ब्रज भूमि को छोड़ रहा हूं। उनको उल्टा लेटा दिया गया, जैसे दंडवत करते वैसे। और भगवान के लीलाओं के प्रति स्मरण करते करते सभी वैष्णवों के बीच में सूरदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवत धाम की, भगवान की जो लीला थी ना उसमें प्रवेश कर गए। तो ऐसे महान वैष्णव जो जीवन भर संसार को तो नहीं देखे, सिर्फ देखे तो मात्र हरि को, हरि की लीलाओं को। और हमको यही शिक्षा देके गए कि जगत में व्यक्ति को देखना सुनना अपने चित्त को लगाना हरि के प्रति होना चाहिए, वही ठीक है जगत में, बाकी जो है वो सब तो दुख का कारण ही है। तो सूरदास जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हमारे तो आंखें तो भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते ठीक से, तो ऐसी कृपा करे कुछ ऐसी आंखें जागे हृदय की के भगवान के रूप को ठीक से समझ पाए, उनके रूप के प्रति हमारा आकर्षण हो, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री सूरदास जी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री एकादशी महात्म की जय। हरे कृष्णा।
जो प्रसाद है वो श्रीमान मुकुंद परेश्वरी की तरफ से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी के इस पवित्र दिन के सभी भक्तों को प्रसाद कराने के लिए, वैसे जब ये मास की शुरुआत हुई थी ना तो प्रसाद की तो बात हुई थी, पहले दिन उन्होंने एकादशी लिखा दी। एकादशी मेरे लिए एकादशी बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है,